हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। गुजरात निमानी हाउस। सुबह के करीब 7 बज रहे होंगे जब अनाही जल्दी जल्दी तैयार होते हुए मिरर से रुहान को देख रही थी, जो अब भी बेसुध सो रहा था। अनाही ने इस वक्त ऑरेंज कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ उसने प्लेन स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। गले में ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ एक डायमंड वाला मंगलसूत्र था, जिसमें बाकी सारे मोती काले रंग के थे और बीच में बस एक छोटा सा डायमंड था। वो उसकी सुराहीदार गर्दन पर काफी खूबसूरत लग रहा था। उसने अपने माथे पर ऑरेंज कलर की बिंदी सेट करते हुए खुद में बड़बड़ाकर कहा, क्या इस घर के सारे मर्द ऐसे हैं? अभी तक कोई नहीं उठा है। अनाही मॉर्निंग वॉक करके आ चुकी थी, लेकिन इस घर के एक भी मेंबर को ये खबर नहीं थी। अनाही ने झुमके पहनते हुए उनमें मौजूद चैन को पीछे की तरफ बालों में लगाया और फिर थोड़े से बाल अपने कंधों पर बिखेरते हुए सिंदूर लगाकर एक बार पूरी तरह खुद को देखते हुए बोली, ऑल सेट, अब मैं ऑफिस के बिल्कुल रेडी हूँ। अनाही बस रुहान की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें थोड़ी डर और घबराहट से बड़ी हो गईं, जब उसने देखा कि वो सफ़ेद बिल्ली अपने कमरे से निकलकर रुहान के बेड की तरफ बढ़ रही थी। अनाही आंखें फाड़े अब उसकी हर हरकत को देख रही थी। वो तेज़ी से बेड पर चढ़ी और फिर रुहान की छाती पर बैठते हुए उसके चेहरे पर मौजूद कम्फर्टर को अपने दोनों पंजों से खींचते हुए म्याऊं म्याऊं करने लगी। अनाही ने माथे पर बल डालते हुए गुस्से से कहा, अरे तुम्हारे पंजे कितने नुकीले हैं, उनको लग जाएगी। अनाही की इतनी तेज आवाज़ सुनकर शुगर ने अपनी गर्दन घुमाकर उसे हूरा और फिर गुर्राते हुए एक बार म्याऊं बोला। इसके साथ ही अनाही दो कदम पीछे हटते हुए बोली, मेरे पास मत आना वरना भूल जाऊंगी तुम्हारे मालिक की कल वाली धमकी को, और इस बार इतनी जोर से फेंकूंगी पंजे के सिर्फ लगेगी नहीं पूरा पंजा टूट जाएगा, बेकार बिल्ली। स्मॉल शुगर और भी ज्यादा गुर्राते हुए अनाही को देख रही थी। उसकी मोटी भूरी आंखें और भी ज्यादा मोटी हो रही थीं। अनाही ने गौर किया और उसकी और बिल्ली की आंखें काफी हद तक सेम कलर की थीं, जिसे देखकर अनाही का मुंह बन गया। तो वहीं रुहान भी अब शुगर के पंजे से परेशान होकर कसम साते हुए अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने जैसे ही शुगर के सफ़ेद बाल आते हैं उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अनाही की नज़र रुहान के चेहरे पर थी। स्माइल करते वक्त उसके गालों पर डिम्पल पड़ रहे थे। शायद अनाही ने पहली बार रुहान को स्माइल करते देखा था। उसकी मुस्कान सच में बहुत ज्यादा प्यारी थी। रुहान ने उस बिल्ली को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग शुगर बेबी। उसकी आवाज सुनकर शुगर की आंखें जो गुस्से से बड़ी बड़ी थीं, उनमें अलग ही सॉफ्टनेस आ चुकी थी। उसने मिमियाते हुए अपना चेहरा रुहान की तरफ किया और अगले ही पल उसके सीने पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। रुहान ने भी उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, थैंक यू बेबी मुझे उठाने के लिए। अनाही मुंह खोले रुहान और उसकी शुगर बेबी के बीच का ये मॉर्निंग लवी डवी कन्वर्सेशन सुन रही थी। फिर उसने अपना गला ठीक करते हुए रुहान को ये एहसास दिलाया कि वो भी यहाँ मौजूद है। रुहान का चेहरा जो सॉफ्टनेस से भरा था, अनाही की आवाज़ सुनते ही एकदम से चौंकते हुए उसने मिरर की तरफ देखा और उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। अपनी बीवी को इतनी सुबह सुबह इतना सजा धजा देखकर उसने दो बार अपनी आंखों को झपकाते हुए खुद को यकीन दिलाया कि हाँ, अनाही इस वक्त इतनी तैयार की आंखों के सामने खड़ी है। वो झट से उठकर बैठ गया, जिसके साथ ही शुगर भी उसकी गोद में बैठकर अब कन्फ्यूजन से कभी रुहान और कभी अनाही को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतने दिनों से शांत इस कमरे में अचानक ये अजनबी कौन आकर रहने लग गई है। रुहान ने अपने सोखते गले को तर करते हुए कहा, मैडम जी आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हैं? अनाही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तैयार नहीं हो रही हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ। आपको नहीं पता है कि मैं निमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट मैनेजर का काम करती हूँ और घर पर पड़ी पड़ी मैं बोर हो रही थी। कल पूरे दिन मेरे से मिलने कोई नहीं आया तो मैं सोच रही हूँ अपना काम भी क्यों थकाऊँ, इसलिए मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई हूँ। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए और मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। इतना बोलकर अनाही ने तिरछी नजरों से एक बार शुगर को देखा और फिर तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही रुहान ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली, जिसके साथ ही उसे महसूस हुआ कि उसका शर्ट सीने पर से फटा हुआ है। उसने हैरानी से खुद को देखा और फिर अपना सर पकड़ते हुए बोला, ओह गॉड, कल रात क्या हुआ होगा। रुहान अपने होठों को भींचते हुए कल के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था सिवाय इतने के कि वो ड्रिंक करके आया था। उसके बाद अनाही ने दरवाजे पर उसको संभाला था। था। रोहान ने बेड पर से उठते हुए शुगर को अपनी गोद में लिया और फिर उसे अपने साथ बाथरूम में ले गया। नहाते वक्त रोहान कल रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि अनाही बार बार उसे खाने के लिए बोल रही थी और फिर उसने नींद में ही उसे खाना खिलाया था। रोहान ने अपने निचले होंठ को काटते हुए अपने मन में कहा, क्या सच में मैडम जी रात को मेरा इंतजार कर रही थी? उन्होंने मेरे बिना खाना भी नहीं खाया। फिर रोहान नहाकर बाहर आया, साथ ही अपनी बिल्ली को भी ऐसे लिए घूम रहा था जैसे वो उसकी माँ हो। वहीं अनाही जल्दी जल्दी सबके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर रही थी, तो साथ ही रोहान के लिए एक गैस पर कॉफी चढ़ा रखी थी। उसे इतनी जल्दीबाजी में काम करता देख निवेदिता वहाँ आते हुए बोली, बेटा पहली रसोई की रस्म में हमने आपसे कहा था कि सुबह का खाना बनाना है, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको खाना बनाना पसंद नहीं है तो यहाँ बहुत सारे कुक है, वो बना लेंगे। अनाही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना सकती हूँ। अनाही ने बाहर हॉल में देखा जहाँ अब लगभग हर कोई उठ चुका था, छोड़कर वेदांत और विहा को। उसने कुछ सोचते हुए कहा, मम्मी जी अभी तक वेदांत जी नहीं उठे, आज उन्हें ऑफिस नहीं जाना है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि दोनों को एक ही ऑफिस जाना है तो मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी, और मैंने दोनों का टिफिन रेडी भी किया है, पर वो अभी तक उठे नहीं है, लग रहा है जैसे उनको लीव लेनी हो। लीव का नाम सुनकर निवेदिता ने खुश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स नई नई शादी हुई है, इसमें लीव लेना तो बनता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी रोहान को लेकर घर से बाहर कहीं घूमने चली जाओ, ऑफिस का काम तो एक महीने बाद भी हो सकता है। ये सुनकर अनाही ने शर्माते हुए अपना चेहरा झुका लिया और फिर कुछ सोचकर बोली, नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे लीव लेने की जरूरत है, क्योंकि रोहान जी को अपना भी बहुत सारा काम होता होगा, वो कल भी पूरे दिन घर पर मौजूद नहीं थे, तो मैं यहाँ अकेली रहकर क्या करूँगी। अनाही की बात सुनकर निवेदिता शांत पड़ गई, क्योंकि उसे भी पता था उसके बेटे को कोई जरूरी काम नहीं है सिवाय आवारागर्दी करने के। पर फिलहाल वो चाहती थी अनाही और रोहान एक दूसरे के बारे में खुद से ही जाने, वो उनकी कोई मदद ना करे, इसलिए उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे वैसा करो, बाकी वेदांत का कुछ पता नहीं है, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, ऐसे सुबह सुबह उन्हें डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता है। इतना बोलकर निवेदिता वहाँ से बाहर चली गई, तो वहीं अनाही ने भी अपने हाथ में कॉफी ली और फिर तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ विहा की आँखें चिड़िया की चू चू सुन के खुली। उसने झुंझलाते हुए कहा, कभी ये भर वाले नहीं सोने देते हैं तो कभी आसपास के जानवर।
वो उठकर सोफे पर बैठी और उसकी नज़र तुरंत घड़ी की तरफ गई जो सुबह के 8 बजाने का इशारा कर रही थी। फिर उसने एक नज़र बेड पर वेदांत को देखा जो अब भी काफ़ी गहरी नींद में लग रहा था। अचानक ही विहा ने इतराते हुए कहा, आज बताती हूँ पतिदेव कि सुबह सुबह लोगों को कैसे उठाते हैं। कल मुझे परेशान किया था ना, मुझे आलसी भी समझ लिए होंगे आप। देखो अब मैं आपको कहूँगी कि मैं तो सुबह 4 बजे उठी थी, आप ही नहीं उठे। इतना बोलकर वो जल्दी से कपबोर्ड से जिम वाले कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चली गई।